शांति। सभी एक साथ एक स्वर में कहेंगे ओम शांति। अभी अभी हम सब ने एक बड़ा ही मधुर गीत सुना, ज्योति बिंदु परमात्मा से, ऐ मेरी आत्मा तू कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर ले, तू हो जा मन में मगन। राजयोग क्या है? आत्मा और परमात्मा का सुंदर मिलन, जिस मिलन के द्वारा आत्मा परमानंद का अनुभव कर सके। इस मिलन के लिए जो ऊर्जा काम करती है वो है मन की शक्ति। इसलिए परमात्मा ने यही कहा है कि इस मन को मेरे में लगाओ। लेकिन अर्जुन की यही शिकायत बार बार गीता में पढ़ते हैं कि हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, एक घोड़े के समान है जो बेलगाम होकर दौड़ता रहता है। इस मन को वश करना बड़ा मुश्किल है। यही शिकायत अर्जुन की बार बार भगवान को मिलती है। लेकिन भगवान यही उनको कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मन भले चंचल है परंतु वैराग्य और अभ्यास से इसको वश में किया जा सकता है। वैराग्य का यहाँ अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना, सन्यासी बन जाना। परमात्मा हमें कर्तव्य परायणता भी सिखाते हैं, छोड़ना नहीं कहते। लेकिन वैराग्य का मतलब है अनासक्त भाव, आसक्ति से परे, मैं मेरा से परे। क्योंकि मन जो भटकता है, विषय वासनाओं में भटकता है, व्यक्ति वस्तुओं में भटकता है, इस संसार के पदार्थों में भटकता है, जीवन की अनेक घटनाओं में भटकता है, इसलिए मन चंचल बेलगाम घोड़ा हो गया है। लेकिन राजयोग के माध्यम से हम इसे दिशा प्रदान कर सकते हैं। बुद्धि रूपी लगाम से मन रूपी घोड़े को परमात्मा के तरफ दिशा देना, यही वास्तव में राजयोग है, जो सभी योगों का राजा है। तो योगी तो हम सभी हैं, हर एक योगी है, क्योंकि किसी न किसी के साथ तो हर एक का योग है। एक बच्चे का योग अपने माता पिता के साथ है, लेकिन ये योग परिवर्तनशील है। समय प्रति समय ये योग कैसे बदलता है, बचपन में बच्चे का योग माँ के साथ होता है ये पता चलता है। एक घड़ी भी उसको माँ दिखाई नहीं देती तो रोने लगता है, लेकिन जिस घड़ी माँ दिखाई दी चुप हो जाता है, समझ लेता है कि माँ माँ मिल गई। तो माँ से योग है, थोड़ा बड़ा होता है तो पिता से भी योग जुड़ जाता है। पहले तो शायद पिता को इतना नहीं जानता, पैदा होते ही माँ ही दिखाई दी ज़्यादा, माँ से ही उसे दूध मिलता है, भोजन मिलता है, तो माँ ही उसके लिए सब कुछ है। फिर पिता का प्यार मिलता है तो पिता में से योग हो जाता है। फिर वो जैसे थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है तो टीचर से योग हो जाता है। स्कूल से लौटेगा, मम्मी डैडी को टीचर की बातें, स्कूल की बातें सुनाएगा, आ टीचर ने ये सिखाया, टीचर ने ये बताया, तो टीचर से योग हो गया। फिर और बड़ा होता है, नौकरी धंधे में लग जाता है, तो ये योग कैसे परिवर्तनशील है। फिर ये योग नौकरी धंधे से लग जाता है, दफ्तर की बातें या अन्य जिस माहौल में रहता है उसकी बातें करने लगता है। फिर जब शादी होती है तो सबसे हटकर पत्नी से योग हो जाता है। बच्चे होते हैं तो पत्नी से भी योग हटकर बच्चों में चला जाता है ना। तो ये योग परिवर्तनशील है। बीमार होता है तो डॉक्टर से योग हो जाता है, जल्दी बुलाओ डॉक्टर को, बुलाओ डॉक्टर को बुलाओ। और जब मरने की घड़ी आती है तब वास्तव में भगवान से तो योग होना चाहिए उस समय। इसीलिए जब मरते व्यक्ति से यही सभी कहते हैं, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। क्यों कहते हैं भगवान को याद करो? क्योंकि अब भगवान के पास जाना है, तो इसीलिए भगवान को याद करो कहते हैं। लेकिन कैसी विडंबना है कि ये योग परिवर्तनशील होते हुए भी सहज रूप से योग बदल जाता है। पहले माँ से, फिर पिता से, फिर शिक्षक से, फिर अन्य बातों से, पत्नी से, बच्चों से, आदि आदि। पर जब मरने की घड़ी आती है तब भगवान से क्यों नहीं जुड़ता? भगवान में मन लगाने के लिए कहेंगे तो कहेंगे, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा धन, हाय मेरा फलाना, तब भगवान याद नहीं रहता। तो क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि परमात्मा की याद के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। आज परमात्मा में मन क्यों नहीं लगता? वस्तु, व्यक्ति, वैभव, स्थान, परिस्थिति, उसमें तो मन सहज लग जाता है, लेकिन ईश्वर में मन नहीं लगता। क्या कारण है? अगर कारण को समझेंगे तो निवारण का भी सहज पता चलेगा। जैसे कोई बीमारी आती है तो कारण पहले जानना चाहते हैं। डॉक्टर कहेगा जाओ ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, एक्सरे निकालो, सोनोग्राफी करो, है ना, कई बातें होती है। और वो सब रिपोर्ट देखने के बाद वो जान सकता है कि कारण क्या है, क्यों ये बीमारी है, फिर उसकी दवाई भी वो सहज दे सकेगा। तो मन ईश्वर में नहीं लगना ये भी एक बहुत बड़ा रोग है। इसलिए तो शिकायत है, मन चंचल है, पापी है, दुष्ट है। वैसे जब दुख होता है तो भगवान सहज याद आता आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, कबीर का बड़ा सुंदर दोहा है, दुख में सिमरण सब करे, फिर आगे सुख में करे न कोई। पर उसके बाद का वाक्य बड़ा सुंदर है, दुख में सिमरण सब करते हैं, सुख में नहीं करते, ये स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद का वाक्य है कि जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। सुख में सिमरण ना किया दुख में करता याद रे। बीमारी आई तब डॉक्टर को याद किया, परंतु बीमारी न आए उसके लिए डॉक्टर के कहने पर सदा चलता रहे, वो परहेज सदा करता रहे तो बीमारी से सदा बचा रहेगा। तो डॉक्टर की सदा याद रहे और उस अनुसार चले तो बीमारी क्यों आएगी। तो परमात्मा जो सुख का सागर है, अगर उसके साथ सतत संबंध हो तो दुख कभी आ ही नहीं सकता। दुख आता ही तब है जब उसे संबंध टूटता है। जैसे बिजली घर से अगर योग है, संबंध है, तो अंधेरा होगा ही नहीं। बिजली घर से योग टूटा तब अंधेरा होता है। तो परमात्मा जो सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सर्वशक्तिमान, जितनी महिमा करो उतनी कम, उस परमात्मा से अगर सतत योग हो तो दुख अशांति ये सब जीवन में आएगा ही नहीं। पर आता है इसका मतलब योग टूटा हुआ है। तो क्या कारण है जो योग टूट जाता है, मन नहीं लगता? राजयोग के अनुसार तीन मुख्य कारण हैं। एक कारण है देह का अभिमान। ये देह अभिमान एक विघ्न बन जाता है, रुकावट बन जाती है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने नहीं देता। जैसे तार को जोड़ना है तो रबर को हटाना पड़ता है। कई बार अंधेरा हो गया तो कहेंगे भाई क्या बात है, क्यों बिजली चली गई, दूसरे मकान में तो बिजली है, इस मकान में क्यों नहीं है? तो बिजली घर से तो बिजली आ रही है, लेकिन इस मकान को क्यों नहीं मिल रही है? तो फिर इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे, इलेक्ट्रीशियन वो मीटर देखेगा तो पता चलेगा कि फ्यूज़ उड़ गया है। फ्यूज़ उड़ गया तो कैसे करंट आएगा, कैसे बिजली जलेगी? तो फ्यूज़ को ठीक करता है वो। कैसे ठीक करता है? रबर को हटाता है। और जो तांबे की तार तांबे के साथ जो जुड़ी थी वो कट गई तो रबर आ गया बीच में, तो फिर रबर हटाएगा, तांबे को तांबे से जोड़ेगा, तब करंट फिर से पास होगी। भाई फ्यूज़ लगा दिया। अब ये देह अभिमान वो रबर की तरह है, जिसके कारण देह से संबंधित जो बातें हैं वही मन में आएगी। देह से संबंधित क्या क्या बातें हैं? व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इस संसार की सारी घटनाएं, वो जीवन के पर्दे पर आँखों के सामने ऐसे घूमने लगती है अंत के समय, जो भगवान कहाँ याद आएगा, खुद को ये देह ही देख रहे हैं। इसलिए राजयोग में पहला निश्चय हमें यही करना होता है कि मैं एक आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, देह का संबंध नहीं है। इस देह का संबंध तो प्रकृति के साथ है, इस देह का संबंध तो संसार के साथ है, ईश्वर के साथ देह का संबंध नहीं है, आत्मा का है। आत्मा ही परमात्मा से आई है। जब मनुष्य मरता है देह तो वहीं पड़ी रहती है, फिर भी कहेंगे भगवान के पास गया। तो कौन भगवान के पास गया? शरीर तो वहीं पड़ा है। जरूर आत्मा के लिए ही यह संकेत है। तो इसीलिए आत्मा का ज्ञान और आत्मा का निश्चय ये बहुत ज़रूरी बात है, आत्मा को परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए। फिर दूसरी बात, परमात्मा कौन है यही पता नहीं था। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दोनों का आपको परिचय आज दिन भर के दो टॉपिक्स में मिले। अब परिचय मिलने के बाद जब हम संबंध जोड़ने लगते हैं, जैसे आप किसी से टेलीफोन पर बात करना चाहते हैं, मोबाइल से बात करना चाहते हैं, तो कनेक्शन तो हो जाता है, नंबर कनेक्ट किया और वो उसको मिल गया, बातचीत शुरू भी हो जाती है। फिर क्या कारण बनता है जो कट जाती आवाज़ या बंद हो जाता है? कई बातें होती है, वही टावर से कनेक्शन हट गया, तो क्या कारण होता है, क्यों कट गया, कुछ विघ्न आ गया। तो आत्मा और परमात्मा का जो अनादि अविनाशी संबंध है, उसको हम अगर जोड़ने की कोशिश भी करते हैं, आत्मा के ज्ञान और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर, फिर एक तीसरी चीज़ विघ्न बन जाती है और वो है मन का अशुद्धिकरण। मन आज इतना मैला हो गया है जो उसमें ईश्वर कैसे स्थान ले। जैसे दूध शुद्ध चीज़ है, पीने से शक्ति आती है, लेकिन उस दूध को जिस पात्र में हम रखते हैं, अगर वो पात्र योग्य नहीं है, अशुद्ध है, मैला है, गंदा है, खटाई वाला है, तो दूध रखने के बाद फट जाएगा या मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रहेगा। तो परमात्मा की याद भी उस मन रूपी पात्र में टिक पाएगी जो इतना ही शुद्ध हो। इसीलिए राजयोग के माध्यम से हम कैसे मन का शुद्धिकरण भी करते हैं। कई लोग समझते हैं बस मंत्र जाप किया तो शुद्धिकरण हो जाता है। अब मंत्र जाप तो भले हम करते हैं, पर फिर भी ये शिकायत तो है ना। इसीलिए ये कहावतें प्रसिद्ध हो गई है, मुख में राम और बगल में छुरी। ये क्यों कहावत प्रसिद्ध हो गई है? क्योंकि मुख पर तो राम राम है, पर मन तो चंचल है, वो तो दुनिया घूम रहा है। भले मुख पर राम राम क्यों न कहा जाए। आप माउंट आबू जाएंगे, वहाँ एक अपना संग्रहालय है, वो आप देखना, देखने जाएंगे, एक बहुत वंडरफुल मॉडल है। एक व्यक्ति भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, हाथ में घंटी है, सामने मूर्ति है, अब पूजा भी कर रहा है, घंटी भी बजा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। उसी समय उनके बच्चे वहाँ पर थोड़ा मस्ती कर रहे होंगे, एक दो को मार रहे हैं या आवाज़ कर रहे हैं, तो इतना गुस्सा आ रहा है, तो आँखों में गुस्सा है, जो हाथ में उसकी घंटी है वो गुस्से में मुख पर राम राम है, आँखों में गुस्सा है बच्चों पर, और जो घंटी हाथ में वो घंटी से ही मार रहा, राम 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 भी कर रहा है, राम राम भी कर रहा है और घंटी से ही, और किससे मारे, तो घंटी तो हाथ में है ना, उसी से ही मार रहा है। और उसके मन में वो बंदर कूद रहे हैं, तो दिखा है पेड़ दिमाग से निकल रहा है, और उस एक एक बंदर, एक एक विकार की का सूचक है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो बंदर घूम रहे हैं और मुख में राम राम है। तो देखो मनुष्य कैसे अपने आप को ही धोखा देता है। वास्तव में मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ इतना ही नहीं है कि कोई एक शब्द या वाक्य का रटन करना या उसका जाप करना। मंत्र शब्द कहाँ से आया? अगर आप मंत्र शब्द की गहराई में जाएंगे तो मंत्र शब्द का जो स्रोत है, जो आधार है, वो मंत्रणा है। और मंत्रणा का अर्थ होता है कोई राय, कोई सलाह। मन को जो सलाह दी जाती है वो मंत्र है। आपस में मिलकर के कोई मशवरा करते, राय सलाह करते, तो कहते हैं मंत्रणा हो रही है। मंत्रणा के नाम पर मंत्र आया, मंत्री आया, जो सलाहकार राजाओं के होते थे, उसके आधार पर मंत्रालय आया। ये मंत्र शब्द से ही ये सारे शब्द निकले हैं, जहाँ सारे सलाहकार बैठते हैं, सेक्रेटरीज बैठते हैं, जो को आजकल गवर्नमेंट के जो भी आप कहेंगे, तो हम देखेंगे कि मंत्र शब्द यानी कोई राय, कोई सलाह जो बुद्धि मन को देवे और मंत्र हो जाए, त्र का मतलब है त्राण, तृप्ति, संतोष, मन इतना संतुष्ट हो जाए, जो शांत हो जाए, शीतल हो जाए, ऐसी राय मन को दी जाए। अभी जो स्थिति है, क्योंकि हम अब देह अभिमान के अंदर हैं, तो इंद्रियां मन को चला रही है, इंद्रियां मन को राय दे रही है, ये सोचो ये सोचो, क्योंकि मन इंद्रियों के वश है। जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों के रस मन को अपनी ओर खींच रहे हैं और मन उसी के बारे में सोचता रहता है। जीभ में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया, क्योंकि आँखों ने कुछ ऐसी चीज़ देखी, मीठी चीज़, गुलाब जामुन, लड्डू, पेड़ा, हलवा, बस पानी आ गया मुख में, हाथ वहाँ गया मुख में डाल दिया। ये सब इंद्रियाँ काम करती है, जो मन को अपनी ओर खींचती है और फिर बुद्धि को दबा देता है। मन मत सोचो, बुद्धि कहेगी ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करो, तो बुद्धि को वहीं दबा देते। जैसे कोई किसी को राय दे ये गलत है ये मत करो, तो उसी व्यक्ति को ही उड़ा दे, बंदूक से मार डाले और हाँ उसको ही मार दे। तो बुद्धि को ही दबा देते हैं, दबा देता है मन और इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। तो आज जो दुनिया की स्थिति है, ये उल्टी गाड़ी चल रही है। पर राजयोग का जब हम अभ्यास करना आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले स्वयं को इस देह भान से परे आत्मा निश्चय करते हैं। मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। फिर मैं आत्मा कहाँ की रहवासी हूँ, इस शांति धाम की रहवासी हूँ। ये संसार मेरा घर नहीं है। और मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। देहधारी जो भी संबंध है वो तो एक जन्म के साथी है, लेकिन परमात्मा तो जन्म जन्म का साथी है। हर जन्म में हमने परमात्मा को ही कहा, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। देहधारी संबंध तो एक संबंध होगा एक के साथ, फिर दूसरा संबंध दूसरे के साथ, और वो भी विनाशी कर्मों अनुसार संबंध। जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ, संबंध भी पूरे हो जाते हैं। उस दूसरे इस जन्म में उसी आत्मा के साथ वही संबंध मिले, ये ज़रूरी नहीं है, संबंध बदल जाते हैं। लेकिन परमात्मा के साथ आत्मा का अनादि अविनाशी हर जन्म में और एक नहीं सब संबंध है। जब ये हमको समझ में आ जाती है बात, तो मन और कहीं नहीं जाएगा, उस एक में ही जाएगा। इसीलिए कौन सा आधार हम अपनाएं जो सहज मन परमात्मा में लग जाए। तो दुनिया में हम देखते हैं मन को ईश्वर में लगाने के लिए स्थूल आधार अपनाते हैं। मंत्र का आधार अपनाएंगे, माला का आधार अपनाएंगे, हाँ भाई 100 माला रोज फेरनी है, बस ये आधार अपना लिया। या तो कोई सामने मूर्ति होगी, उसका ध्यान करने की कोशिश करेंगे, तो माला, मंत्र, मूर्ति, ये जो तीन स्थूल आधार है, इसको अपनाने की कोशिश करते, ताकि मन उसी के आधार से ईश्वर में लग जाए। अब मंत्र, माला, मूर्ति, ये जो भी है वो सब स्थूल चीज़ है और मन सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म मन को ये स्थूल आधार कैसे रोक सकते हैं या आकर्षित कर सकते हैं उस हिसाब से, क्योंकि मन तो सूक्ष्म है, इसलिए आधार भी सूक्ष्म चाहिए, तो मन उसमें जाएगा। अभी मन क्योंकि देह के अभिमान के वश है, इसीलिए स्थूल बातें सोच रहा है और हम समझते यही आधार होता है। अब न आत्मा स्थूल है, न परमात्मा स्थूल है, आत्मा भी सूक्ष्म है, परमात्मा भी सूक्ष्म है, ये आँख ही तो देख नहीं सकती। कई कहते अगर आत्मा है परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देते, हम कहते कैसे देख सकते, ये आँखें तो चर्म चक्षु है, चर्म चक्षु चर्म चीज़ों को ही देखेगी जो प्राकृतिक है। आत्मा और परमात्मा प्राकृतिक तो है ही नहीं, इसलिए ये आँखें उसको कैसे देख सकती है। वैसे भी कोई प्राकृतिक भी हो तो भी आँखें सब कुछ नहीं देख सकती है, इनकी बड़ी लिमिट है। तो आत्मा परमात्मा को देखने के लिए तो आध्यात्मिक चक्षु, सूक्ष्म चक्षु, दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, और परमात्मा ही वो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। इसीलिए हम जब परमात्मा की पहचान देते हैं, कई कहते हैं आपको कैसे पता चला, लेकिन परमात्मा ने अब दिव्य दृष्टि के द्वारा अपनी पहचान दी पिताश्री ब्रह्मा बाबा को। कई लोग कहते हैं ये पिताश्री ब्रह्मा बाबा जिनका फोटो है यही क्या आपका गुरु है, आप इनको ही भगवान कहते हो। हम कहते नहीं, इनको भगवान तो कहते नहीं, लेकिन गुरु भी नहीं कहते, सतगुरु भी एक ही परमात्मा है। किसी देहधारी को हम सतगुरु भी नहीं मानते, हाँ गुरु अनेक हैं, कई ज्ञान देते हैं वो और बात है, लेकिन सतगुरु एक परमात्मा है जो सत्य ज्ञान खुद ही देते हैं। तो कैसे पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा परमात्मा ने अपनी पहचान दी और अपने साथ योग लगाने की शिक्षा दी है। तो मन क्योंकि सूक्ष्म है इसलिए राजयोग में हम सूक्ष्म आधार देते हैं जो सहज मन परमात्मा में लग जाए। आप कहेंगे कौन से होते हैं सूक्ष्म आधार, आप देखिए दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, पल पल पर कितनी घटनाएं दुनिया में होती रहती है, लेकिन जब तक हमें पता नहीं है तब तक मन उसमें जाएगा ही नहीं। आज आप लोगों को मालूम होगा भारत के सब लोगों की नज़र टीवी पर, आज इलेक्शंस की गिनती, वो वोटों की गिनती हुई है, कौन जीता कौन हारा सारा दिन यही चला है। मैं आप लोगों को बता दे कि कांग्रेस जीत गया है, ये बता देते कांग्रेस को बहुत मत बहुमत मिली है अब जो इसके पक्ष के आज ही दोपहर तक सब आउट होता गया, तो इसीलिए काफ़ी वोटों से वो जीता है कांग्रेस। परंतु अब देखो, अब जब तक आपको पता ही नहीं था तो आपको याद भी नहीं होगा कि आज गिनती होगी है, दो दिन से निकल आए आप माउंट आबू आने के लिए, तभी आपको पता चला परिचय मिला तो मन चला गया, अरे हाँ बरोबर आज के दिन तो गिनती होनी थी, हमने जिसको वोट दिया पता नहीं वो जीत गया होगा या नहीं जीता होगा, है ना, कई बातें। तो जब तक वो पहचान न मिले, परिचय न मिले, सूचना न मिले, तब तक मन नहीं जाएगा, पता ही नहीं है। तो मन परमात्मा में भी तब लगे जब पहले परमात्मा का परिचय हो, आखिर ईश्वर है कौन, तो इसीलिए परिचय आपको सबसे पहले दिया। अब परिचय ही पर्याप्त नहीं होता, चलो परिचय मिल भी गया, आप ट्रेन में इकट्ठे सफ़र करते हैं, समय बहुत मिलता है, आप उसमें एक दो से परिचित हो जाते हैं, आप कौन हैं कहाँ से आए हैं क्या करते हैं आदि आदि परिचित हो गए। चलो फिर जब उनकी स्टेशन आई तो वो उतर गया, फिर चल मेरे भाई तुम अपने घर सुखी, मैं अपने घर सुखी, ठीक है, कौन किसका बैठ के पीछा करता रहेगा, वो कहाँ गया क्या, ठीक है गया अपना। तो परिचय ही पर्याप्त नहीं है, मन को और आगे उसमें लगाने के लिए दूसरा आधार चाहिए, संबंध। जहाँ संबंध होता है ना वहाँ मन अपने आप जाता है। अब परिचय लेते लेते अगर कोई संबंध निकल आया, चाहे दूर का ही रिश्ता सही, चाहे ऐसा रिश्ता जिसमें एक ही गांव में रहने वाले हो, एक ही स्कूल में पढ़ते हो, एक ही जगह हाँ खेल करते हो, कुछ भी कुछ ऐसी समानता नज़र आ गई, बात करते करते परिचय लेते लेते कोई ऐसा संबंध निकल आया, एक ही व्यवसाय के लोग हैं, एक ही कंपनी में काम करते थे, कुछ भी, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही प्रांत के हैं, विदेश में जाते हैं तो एक ही देश के होते हैं, तो भी आपस में आकर्षित हो जाते हैं। तो जहाँ कुछ भी संबंध निकल आता है वो संबंध आकर्षित करता है और मन सहज लग जाता है। वो कहेंगे अच्छा हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, याद है फलाने सन में एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो मन चला जाएगा वहाँ, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले चला गया मन सहज। तो परमात्मा के साथ भी मेरे संबंध हैं, हम ये भूले नहीं। तो जब संबंध का पता चला परिचय होने के बाद तो मन लगना सहज हो जाता है। फिर तीसरा आधार संबंध ही सब कुछ नहीं है। कई बार संबंध तो जुड़ गया, पति पत्नी बन गए, बाप बेटा हैं, लेकिन वो प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, एक दो के प्रति वो रिस्पेक्ट नहीं है, तो बहुत समय भी ये संबंध नहीं चलता है, फिर अलग भी हो जाते, दूर चले जाते एक दो से। तो संबंध के बाद स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए, आत्मा का परमात्मा से भी अटूट प्रेम होना चाहिए। अभी जो संबंध है ईश्वर के साथ उसमें स्वार्थ अधिक है, प्रेम कम है, स्वार्थ अधिक है, कुछ न कुछ भगवान से मांगते ही रहते हैं हर वक्त, ये दो वो दो वो दो। इतना जो भगवान ने दिया है वो दिया हुआ वो तो याद ही नहीं है, वो तो समझते हमारा हक है जो हमें मिला है, इसलिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। भगवान से मिला तो कहेंगे भगवान बड़े अच्छे, और नहीं मिला तो भगवान जैसा बुरा कोई नहीं है, क्योंकि दिया नहीं भगवान ने। एक विद्यार्थी की जब परीक्षा होगी तो जाएगा मंदिर में, हे भगवान तू मुझे पास कर देना, लेकिन अब खुद पढ़ाई की नहीं, सारा साल खेलता रहा पढ़ाई की नहीं, तो भगवान क्यों पास करेगा उसे? और तो जिसने मेहनत की उनको पास करेगा या जिसने मेहनत नहीं की उनको पास करेगा? किसको पास करेगा? हाँ, मेहनत करने वाले को। तो नहीं पास किया कहेंगे भगवान तो बहुत बुरा, अब उसमें भगवान ने क्या बुराई की, आपने पढ़ाई तो की नहीं। तो मनुष्य आज इतना स्वार्थी हो गया है, वो सच्चा संबंध प्रेम का संबंध तो रहा ही नहीं। तो इसलिए आत्मा का परमात्मा से सच्चा प्रेम कैसे बढ़े? संबंध जो अनादि अविनाशी वो भी टूट गया है, उसको जोड़ने की जरूरत है। प्रेम भी जो स्वार्थ में बदल गया है उसको फिर से प्रेम में बदलना है। तो मन कैसे लगेगा परमात्मा में? चार मूल आधार है। पहला आधार है परिचय, दूसरा आधार है संबंध, तीसरा आधार है प्रेम स्नेह, और चौथा आधार है प्राप्ति। जहाँ से प्राप्ति होती है ना, वहाँ से मन हटता ही नहीं है। अगर ये हमें मालूम हो कि परमात्मा ही सुख शांति का दाता है, वही मुझे सब कुछ देने वाला है, तो मन हटे क्यों ईश्वर से? जो दुख में हम केवल उसको याद करते हैं, जो समझते हैं कि वो सुख देगा इसलिए दुख में याद करते हैं, लेकिन सदा ही वो सुख का सागर है, उससे आत्मा को प्राप्ति होती रहे तो मन उनसे हटेगा ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति हो रही है आत्मा को। अब ये चार आधार हम देखेंगे और उस अनुसार क्या विधि हो जो मन सहज परमात्मा में लग जाए। संबंध कहाँ टूटा है? वैसे तो अनादि अविनाशी संबंध है, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ जो संबंध होते हैं ना, वो नए संबंध बनते हैं, उसके पहले पता नहीं होता है। एक कुमार और कुमारी की सगाई करनी होती है, विवाह करना होता है, दोनों को नहीं मालूम कि मेरा जीवन साथी कौन बनेगा, ढूंढते रहते हैं ना, माँ बाप भी ढूंढते हैं कौन इसको अच्छा साथी मिले, ढूंढते हैं तो पता तो नहीं है ना पहले। फिर नया संबंध जुड़ता है, फिर जब माँ बनने वाली होती है तो बच्चा कैसा आएगा वो भी माँ को पता तो है नहीं, जब पैदा होता है तब पता चलता, भले आजकल पहले से पता करते, लेकिन जब तक सामने न हो तब तक तो इतना कुछ पता नहीं चलेगा। तो एक नया संबंध है ये, पहले तो वो माँ नहीं है, बच्चा हुआ तो माँ कहलाई, बच्चा हुआ तो पिता कहलाया। तो ये नए संबंध बनते हैं देहधारियों के साथ। अब आत्मा परमात्मा का जो अविनाशी संबंध है वो आज टूट चुका है, इसीलिए मन ईश्वर में नहीं लगता। अब उसको कैसे जोड़ें, उसकी विधि क्या होती है? जैसे आपको बतलाया ना, तार को तार से जोड़ना है तो रबर को हटाना पड़ेगा। अब रबर को हटाना पड़ेगा माना कुछ समानता को समझना होगा। हमने परमात्मा से अपने आप को बहुत दूर कर दिया है, इसीलिए मन नहीं लगता। कैसे? हमने सोच लिया परमात्मा तो निराकार, निर्गुण, निरंजन, नाम रूप धाम गुण सब सबसे न्यारा, और मैं तो फलाने नाम वाला, फलाने धर्म वाला, जाति वाला, रंग वाला, प्रांत वाला, देश वाला, व्यवसाय वाला। तो अपने आप को नाम रूप धाम सब कुछ दे दिया और ईश्वर के लिए कह दिया सबसे न्यारा। अब संबंध कैसे जुड़ेगा? आप देखेंगे किसी कुमार और कुमारी की भी सगाई करानी होती है ना, संबंध जोड़ना होता है, तो माता पिता क्या करते हैं, दोनों की जन्म पत्री ज्योतिषी को देते हैं, कहेंगे ज़रा देखो भाई योग है, हम संबंध जोड़े बनाएं तो योग है, तो जन्म पत्री में योग कैसे देखता है ज्योतिषी, क्या करता है, दोनों की कुंडली मैच करता है। वो दोनों की कुंडली में ग्रह राशि संस्कार स्वभाव जो कुंडली में वो देखता है, वो ज्योतिष की भाषा अपनी होती है, उसमें देखता है अगर ये आपस में मैच होते हैं, मिलते हैं तो कहेंगे योग है, अगर मैच नहीं होते, मिलते नहीं है तो कहेंगे योग नहीं है। तो योग होने लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, हाँ मैच चाहिए, मैच होना चाहिए, मिलना चाहिए, कुछ समानता होनी चाहिए, आपस में एक हो सके। जैसे दूध और तेल एक नहीं हो सकते आपस में, भले दूध ये पानी और तेल, पानी में आप तेल डालिए, तेल तैरता रहेगा ऊपर से, पानी के साथ मिलेगा नहीं, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक डेंसिटी अलग है, पानी की अलग है, तेल की अलग है, मिलेंगे कैसे। इसी प्रकार अगर हमने ये समझ लिया परमात्मा तो नाम रूप धाम ये सब से अलग है और मैं तो फलाने फलाने वाला, कभी भी मिलन नहीं होगा। या फिर सोच लिया परमात्मा तो बहुत पावन है और मैं एकदम पतित हूँ, तो हम देखें कि मैं बता रही थी, क्या बता रही थी कौन सी बात, हाँ मैच होना चाहिए। अब परमात्मा के लिए कहेंगे वो तो अति पावन है, और खुद के लिए क्या कहेंगे, मैं तो पतित हूँ, मैं तो नीच हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो कपटी हूँ, मैं तो गंदा हूँ, बंदा हूँ, चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ, मूर्ख हूँ, और हे भगवान तुम तो बहुत ऊँचे हो। फिर कहेंगे हे भगवान मुझ पर दया करो। अब वो इतना ऊँच, कितना पावन, और मैं इतनी पतित, योग कैसे लगेगा। या फिर हमने समझ लिया कि भगवान तो बहुत ऊंचा है, सातवें आसमान में कहीं रहता है, मैं तो इस संसार का एक प्राणी हूँ, तो कहाँ योग लगेगा, चिल्लाना पड़ता है, पता नहीं वो सुनता भी है या नहीं, कहीं बहरा तो नहीं है, इसलिए जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है, समझते कहीं उसको सुनाई दे, हाँ बहरा ना हो, और नहीं सुनता तो और ही कह दे भगवान तो बहरे हो क्या, तुम सुनते ही नहीं हो। अब ये सब योग नहीं है, ये वियोग है। योग तो एक सेकंड का होता है, तो वो संबंध जो आज टूट गया है उसको फिर से जोड़ने की विधि क्या है। राजयोग से हमें यह पता चला कि आत्मा और परमात्मा इन दोनों के बीच में बहुत समानता है। क्या समानता है, एक तो आत्मा का रूप भी ज्योति स्वरूप और परमात्मा का रूप भी ज्योति स्वरूप। परमात्मा भी एक आत्मा है लेकिन परम है। किस बात में परम है? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, कर्तव्य, इन सब में सबसे ऊंचा है वो, सबसे न्यारा है वो। लेकिन है तो वो भी एक आत्मा, तो आत्मा ज्योति स्वरूप है तो परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। दोनों का स्वरूप एक जैसा है। आत्मा का भी साक्षात्कार होता है, परमात्मा का भी साक्षात्कार होता है, दोनों ही ज्योति स्वरूप में साक्षात्कार होता है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा को शिव का साक्षात्कार हुआ था, अपनी आत्मा का भी साक्षात्कार हुआ, वो आपको कल बताएंगे पूरा इतिहास। तो अब दोनों का स्वरूप एक जैसा है। अब दूसरी समानता क्या है? धाम भी एक ही है, एक ही घर है। ये नहीं कि हमारा घर ये दुनिया है और ईश्वर का घर कहीं और है। हम एक ही घर के वासी हैं, उसी परम धाम से ही हम आत्माएं भी आई है। जो बच्चों का घर वो पिता का भी घर, हम आत्माएं भी वहीं से आई है परम धाम से। तो उस परम धाम में ही हमें वापस जाना है, एक ही घर के वासी हैं। इसलिए आत्मा दुख से जब दुखी होती है तो भगवान को पुकारते, हे भगवान उठा लो मुझे इस दुनिया से, नहीं जीना है, क्योंकि आत्मा को अपना घर याद आता है। जैसे होम सिक हो जाते हैं ना, कोई अपने घर से बहुत समय से दूर चला है, गया है किसी कार्य अर्थ, तो घर बहुत याद आता है उसको। आत्मा को भी अपना घर याद आता है, इसलिए मुक्ति मोक्ष की कामना करते हैं हम सब। परंतु हमारा घर वही है, अपने घर में जाने के लिए निमंत्रण नहीं चाहिए। आप दूसरे के घर में जाएंगे तो निमंत्रण चाहिए, ऐसे कैसे जाऊं मैं, मुझे निमंत्रण थोड़ी दिया है जो मैं जाऊं। पर अपने घर में जाने लिए थोड़ी निमंत्रण चाहिए। मन से एक सेकंड में चले जा सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि एक बेहद की दुनिया, सुनहरा लाल प्रकाश का महतत्व, और मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सम्मुख हूँ। तो आकर्षण होगा, जहाँ समानता है वहाँ आकर्षण है। प्रकृति के अंदर विरोधाभास है, जहाँ पर भिन्नता है वहाँ आकर्षण है। नॉर्थ और साउथ का आकर्षण है, उत्तर और दक्षिण के जो जैसे मैग्नेट होते हैं ना, उत्तर को उत्तर से मिलाओ तो अलग हो जाएंगे, दूर होते जाएंगे, उत्तर को दक्षिण से मिलाओ तो चिपक जाएंगे। तो प्रकृति के अंदर जहाँ विरोधाभास है वहाँ आकर्षण है, पर आध्यात्मिकता में जहाँ समानता है वहाँ आकर्षण है। समान विचार मिल जाएंगे, समान संस्कार मिल जाएंगे। समानता जहाँ थोड़ी भी होगी वहाँ मिलन का अनुभव होगा। तो एक जैसा स्वरूप, एक ही घर, और तीसरी बात, एक जैसे ही गुण। आत्मा के जो गुण हैं परमात्मा के भी वही गुण हैं। इसीलिए कई लोग समझते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश क्यों समझते हैं? क्योंकि आत्मा के अंदर वही गुण है अंश में जो परमात्मा में है। इसीलिए परमात्मा की जब महिमा गाते हैं तो क्या कहते हैं? परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, सर्व गुणों का सागर है। और आत्मा के लिए क्या कहेंगे? ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है। इसीलिए ईश्वर की तुलना सागर से करते हैं और आत्मा की तुलना गागर से करते हैं। भाई गागर खाली होगी तो कहाँ से भरेंगे? सागर से। लेकिन आत्मा का वही गुण है जो परमात्मा का गुण है। पर क्यों आत्मा को अंश कहा? अंश का मतलब ये नहीं है कि आत्मा कोई परमात्मा का टुकड़ा है। वैसे अंश का अर्थ तो यही होता है, अब ये लकड़ी है इसका अंश अंश निकालते जाएं तो अंश सब बिखर जाएंगे, इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, ये अंश होता है। लेकिन परमात्मा के लिए कहेंगे वो सागर है, आत्मा स्वरूप है, वो सागर है, आत्मा गागर है, ये किस भाव से कहते हैं? संख्या में अंतर जरूर है, वो सागर और आत्मा गागर उसी गुण की, लेकिन गुणवत्ता वही है। गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। जो शांति का गुण परमात्मा में है, आत्मा के अंदर भी वही शांति का गुण है, वही उसका स्वभाव है। लेकिन आत्मा अपने आप को भूल जाती है, ये स्मृति और विस्मृति के खेल में आत्मा आती है, परमात्मा नहीं आते। परमात्मा तो सदा जागती ज्योति है, वो तो सदा जानते हैं कि वो कौन है, आत्मा भूल जाती है। यही तो अंतर हुआ, आत्मा और परमात्मा का सबसे बड़ा अंतर है। कई समझते ना कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, शिव और जीव में क्या अंतर है, बस अंतर है वो ज्ञान है तो आत्मा ही परमात्मा है। हम कहते हैं ज्ञान का मतलब ये नहीं कि वो ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूँ तो मैं परमात्मा बन जाऊँगा, नहीं। परमात्मा कोई स्टेटस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई पद नहीं है। कोई पद है चलो वो दूसरा वो उतर जाता है तो मैं उसकी जगह पद संभाल लेता हूँ। परमात्मा तो सदा ही परम पिता है, पिता कोई पद नहीं होता है, पिता तो सदा ही पिता होता है। चाहे बच्चा उसका अपने बच्चों का पिता हो जाए, अपने पोतों का दादा हो जाए, लेकिन अपने पिता के आगे वो सदा ही बच्चा है, नहीं? शिक्षक कोई पद नहीं होता है, शिक्षक सदा ही शिक्षक होता है। गुरु कोई पद नहीं होता है, वो सदा ही गुरु होता है। विद्यार्थी किसी शिक्षक का चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, बहुत जैसे विद्यार्थियों का वो शिक्षक बन जाए, लेकिन उसका जो प्राइमरी स्कूल टीचर होगा ना, उसके आगे वो विद्यार्थी कहलाएगा, चाहे वो कितना बड़ा टीचर बन जाए। गुरु का शिष्य कितना बड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी कहने में आएगा फलाने का शिष्य, भले वो कई शिष्य उसके होंगे। तो हम देखें कि कैसे परमात्मा कोई पद नहीं है कि आत्मा जाकर के परमात्मा बन जाएगी। अगर अज्ञान मिटेगा तो क्या परमात्मा को अज्ञान हुआ, जो फिर ज्ञान हुआ फिर वो ईश्वर बन गई, तब तक अज्ञान था? ऐसी बात नहीं है। ज्ञान मिला तो आत्मा परमात्मा का मिलन होगा, आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेगी। लेकिन परमात्मा तो सदा एक है, आत्मा ही अनेक है। आत्मा ही जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा चक्र में आते ही नहीं है। कई समझते आत्मा भी चक्र से छूट जाए तो परमात्मा बन जाए। अब शिव परमात्मा कहते ये नहीं होगा, आत्मा माना जो चक्र में आए। आत्मा चक्र से छूट नहीं सकती, ये कल आपको बताया जाएगा। हाँ, चक्र में कितने जन्म लेती है वो अलग बात है, लेकिन सदा के लिए छूट नहीं सकती, ये परमात्मा ने अपनी रचना का ज्ञान दिया है। तो तीन बातों की समानता है, एक स्वरूप की समानता, दूसरा धाम की समानता, तीसरा गुणों की समानता। इसीलिए आत्मा को परमात्मा का अंश कह दिया, या आत्मा सो परमात्मा कह दिया। अब जब ये समानता को समझा तो संबंध जोड़ना बहुत सहज है, क्योंकि योग होगा, मिलन होगा। आत्मा परमात्मा का अनादि अविनाशी संबंध फिर से जोड़ने के लिए हमें चिंतन करना होगा। क्या चिंतन करना होगा? कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, और मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम का वासी हूँ, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ। इसलिए जब शांति पाठ करते हैं तो तीन बार शांति कहते हैं अंत में, ओम शांति शांति शांति, है ना? तो तीन बार क्यों? क्योंकि ये आत्मा का पूर्ण परिचय है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, ओम शांति। ओम शब्द में तीन अक्षर है, अ उ और म, यानी वही मैं हूँ जिसका स्वभाव शांति है। फिर मेरा जो धाम है वो शांति का धाम है, वो दूसरी बात शांति। फिर मेरा जो पिता है, परम पिता शिव परमात्मा, वो शांति का सागर है, तीसरी बार शांति। तो जिसका स्वभाव ही शांति हो, जिसका घर शांति का धाम हो, जिसका पिता शांति का सागर हो, वो अशांत कैसे हो सकता है? तो शांति अनुभव करने के लिए चिंतन ही पर्याप्त है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति धाम का वासी, शांति के सागर परमात्मा की संतान, आत्मा को शांति का अनुभव उसी घड़ी होने लगेगा। तो शांति आपसे कितनी दूर है, कितनी दूर है, हाँ क्या कहेंगे, कितनी दूर है जी? एक सोच की दूरी पर है, केवल एक सोच। वो सोच है ओम शांति शांति शांति। अगर आप ये सोचते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति धाम का वासी, शांति के सागर परमात्मा की संतान, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अशांत नहीं कर सकेगी, क्योंकि आप स्थिर हो गए उस शांति की शक्ति में। और अगर ये सोच नहीं है और ये सोचते हैं शायद ये चीज़ मिलेगी तो शांति मिलेगी, ये बात हो जाएगी तो शांति होगी, वो होगा तो शांति होगी, लेकिन वो हुई फिर दूसरी बात आ जाएगी, फिर तीसरी बात, शांति तो होगी नहीं। इसलिए शांति है तो अभी है, और अभी नहीं अनुभव की तो कभी नहीं अनुभव की। कई लोग कहते हैं ना, बड़े खेत से कहना पड़ता है जब किसकी मृत्यु होती है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना कहते हैं, लेकिन खेत से कहना पड़ता है कि जिसने जीवन काल में शांति अनुभव नहीं की ना, मरने के बाद भी नहीं करेगा, ये कटु सत्य है। क्योंकि जो आत्मा के अंदर संस्कार है शांति के या अशांति के, वही आत्मा ले जाएगी अपने साथ। अगर वो अशांत ही रहा है तो वही संस्कार जाएंगे ना आत्मा में, भले देह तो उनका शांत हो गया, मृत्यु माना क्या देह शांत होना, पर फिर भी आत्मा के लिए कहेंगे हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। तो राजयोग क्या कहता है, शांति है तो अभी है। कैसे है? मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति धाम का वासी, शांति के सागर परमात्मा की संतान, मन को बुद्धि के द्वारा एक सेकंड में उस परम धाम में दिशा दे दो, और मन की आँख उस परम धाम को देखे, अखंड ज्योति के महतत्व में मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा, चेतन सत्ता परमात्मा के सम्मुख हूँ। जैसे आकाश में दो सितारे देखते हैं ना, एक दो के कितना निकट हैं, तो मैं आत्मा भी परमात्मा के बहुत निकट हूँ। वो शांति का सागर है, मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हूँ। और जैसे ही मैंने ये संकल्प दिया अपने आप को, शांति उसी वक्त एक शक्ति के रूप में मुझे अनुभव होगी। तो ये है संबंध जोड़ने की विधि, और जैसे ये संबंध जुड़ गया शांति की शक्ति मिलने लगेगी। जैसे बैटरी को चार्जर में, हाँ चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं, पावर हाउस से जोड़ दिया, अपना मोबाइल जोड़ते ना, तुरंत करंट आने लगती है, क्योंकि चार्जर बीच में जो दोनों को कनेक्ट करता है, मोबाइल को बिजली घर से। तो आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए राजयोग चार्जर का काम करता है, कि मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, यही राजयोग है। शांति धाम का वासी हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अब ये संबंध जुड़ा, लेकिन ये संबंध को कायम रखने के लिए फिर स्नेह चाहिए। वो स्नेह वो गम की तरह, वो एडहेसिव की तरह, वो जोड़ के रखता है। ईश्वर से सच्ची लगन चाहिए, प्रेम चाहिए, और जब ये सच्ची लगन होगी तब उस लगन के आधार से हम मगन रह सकेंगे। कबीर का एक बहुत सुंदर दोहा आता है, आप लोगों ने सुना होगा। वो बताते हैं कि कबीर की जो कुटिया थी वो किसी कसाई के पास थी, तो रोज़ वो कसाई के द्वार से ही गुज़रता था अपनी कुटिया में जाने के लिए। तो रोज़ उसी को लगता था, हाय ये कसाई कितना पाप कर रहा है, कितना पाप कर रहा है, कितने वो जानवर काट रहा है, क्या क्या कर रहा है। अब उसको बहुत मन में घृणा आती थी, लेकिन उसने अपने आप को कैसे समझाया, वो कौन सी कहावत कबीर की आती है, हाँ कबीरा तेरे क्या, वो कौन सा मैं भूल गई, हाँ तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तेर, तू क्यों हो उदास, और बस तू एक लगन के मगन में रहो। तो लगन में मगन रहना यही वास्तव में राजयोग है, उस परमात्मा की लगन में मग्न रहना। अब हम भक्ति भी जो करते हैं उसमें भी लगन में मगन होने का ही लक्ष्य होता है, और उसके लिए क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, समझते कि हम इसमें परमात्मा के लगन में मग्न रहेंगे। अब कीर्तन का अर्थ क्या होता है, कीर्ति शब्द से कीर्तन शब्द आया है, कीर्ति का मतलब होता है महिमा, अर्थात परमात्मा की अंदर ही अंदर महिमा गाते हैं। तो जितनी हम महिमा गाते जाते हैं उतना परमात्मा के लिए प्रेम बढ़ता है। ये एक मनोविज्ञान है, आप मनोविज्ञान में देखेंगे अगर कोई किसी व्यक्ति के लिए बुराई सोचता है, उसकी नेगेटिव बातें, उसकी बुरी बातें सोचता है, तो उसके प्रति नफरत पैदा हो जाती है, हम उनसे किनारा करने लगेंगे। लेकिन अगर उसके बारे में हम सकारात्मक बातें सोचते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, तो जैसे ही वो सामने आएगा हम मुस्कुरा देंगे, उसके नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ सकारात्मक चिंतन है, जहाँ गुणों का चिंतन है, वहाँ प्रीत जुड़ती है, जहाँ अवगुणों का चिंतन है वहाँ नफरत होती है। तो ये कीर्ति या कीर्तन ये क्या है, परमात्मा की महिमा करना, उपमा गाना, उनकी प्रशंसा करना, उनके गुणगान करना, ये गुणगान ही सिद्ध करता है कि हम परमात्मा से प्रीत जोड़ते हैं। लेकिन होता क्या है, प्रीत जोड़ने की कोशिश तो करते हैं, खूब भजन गाते हैं, खूब कीर्तन गाते हैं, लेकिन भजन गाकर कीर्तन करके फिर कुछ न कुछ मांग लेते हैं। ये तो ऐसे हुआ जैसे किसी बड़े आदमी के पास जाओ ना, प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास, कोई मिनिस्टर के पास, अब उसके पास अथॉरिटी है, तो उनके पास जाकर उनकी खूब महिमा गाओ, साहब आप तो ऐसे हो, साहब आप तो ऐसे हो, आप तो बहुत महान हो, आप तो बड़े दिल वाले हो, आप तो ये हो, आप तो वो। अब वो सोचेगा अभी इस कुछ दाल में काला है, ये कुछ मेरे से चाहता है, तो इतनी सारी उपमा गा करके फिर कहेंगे साहब मेरा ये काम कर दो। अब उसको क्या कहा जाता है, पहले तो मस्का लगाया है ना, मस्का लगाते हैं ना, पहले तो पोल्सन बटर था, आजकल अमूल बटर है, तो अमूल बटर लगाया फिर कुछ मांग लिया, तो ये स्वार्थ हो गया ना, महिमा गाई और फिर कुछ मांगा, मांगना है तो पहले ही मांग लो, महिमा गाने की क्या ज़रूरत है, वो तो जानता है वो कौन है। तो भगवान जानता नहीं है क्या, वो क्या है, जो हम पहले उसकी महिमा करेंगे फिर कुछ मांगेंगे, उसको खुश करने की कोशिश करेंगे महिमा गा करके। इसलिए आजकल जो बड़े लोग होते हैं उनके पास फुर्सत नहीं होती है, सीधा ही आप उनके पास जाओगे कहेगा क्या काम है बताओ सीधा, वो अगर आप उनकी महिमा गाना शुरू करेंगे वो कहेगा मैं जानता हूँ महिमा गाने की ज़रूरत नहीं है, क्या काम है, वो काम की बात बताओ। तो भगवान से हमें मांगना भी क्या है ये भी हमें पता नहीं है, छोटी छोटी बातें हम भगवान से मांगते रहते हैं, छोटी छोटी बातें, इस कलयुगी दुनिया की बातें। भगवान तो कहते हैं बच्चे मैं तो तुम्हारा वो परम पिता हूँ जो तुमको सब कुछ दे सकता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको पता ही नहीं है कि मेरा पिता कितना बड़ा सेठ है, मान लो उसकी प्रॉपर्टी कितनी है बच्चे को क्या मालूम इतना, तो वो कहेगा डैडी मुझे एक पेंसिल चाहिए, मुझे एक लॉलीपॉप चाहिए, एक टॉफ़ी चाहिए, ही मांगेगा ना। पर जब बड़ा होगा तो सोचेगा मेरा बाप के पास तो बहुत कुछ है, तो फिर बड़ी चीज़ें डिमांड करेगा। लेकिन अगर बेटा लायक है तो बच्चे को देने के बिना और किसको देगा पिता, बच्चे को ही तो देगा। आज किसके पास बहुत प्रॉपर्टी है तो पिता क्या समझता है, मेरे बच्चों के लिए है ना। उनसे पूछो इतना सब कुछ है तुम्हारे पास किसके लिए, कहेंगे बच्चों के लिए। तो भगवान जो इतना गुणों का सागर है किसके लिए है, किसके लिए है माताएं, हाँ हमारे लिए है ना। तो और हम वो छोटी छोटी चीज़ें भगवान से मांगते हैं। भगवान कहते मैं तो इतना बड़ा दाता हूँ जो तुमको मैं स्वर्ग का भी अधिकार देने को तैयार हूँ, आप लेने के लिए तैयार हो माताएं? सतयुग की लक्ष्मी बनना चाहते हो? अभी भी कईयों का नाम लक्ष्मी ज़रूर होगा, कई लक्ष्मियाँ बैठी होगी, लेकिन सतयुग की लक्ष्मी बनने के लिए बड़ी बहादुरी चाहिए, उसके लिए तो ईश्वर से योग चाहिए। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आया हूँ तुमको स्वर्ग का अधिकार देने के लिए, पर पहले उसके लिए लायक बनो, मेरे साथ संबंध जोड़ो। ये कलयुग की छोटी छोटी चीज़ें मत मांगो। उस पर एक कहानी सुनाते हैं ना, एक कहानी आती है कि एक भक्त था, बड़ा बहुत उसने भक्ति की तो भगवान प्रसन्न हो गए, भक्ति का फल तो भगवान देंगे, दर्शन दे दिया। और भगवान ने पूछा तुम क्या चाहते हो, मांगो एक वरदान। अब वो क्या मांगे एक वरदान, उसको तो बहुत कुछ चाहिए था, तो एक वरदान क्या मांगे। तो अपने घर गया, सोचा अच्छा कल भगवान फिर से दर्शन देंगे और पूछेंगे क्या वरदान आप मांगना चाहते हो, एक ही देगा भगवान। तो पत्नी के पास गया, पत्नी से पूछा, पत्नी कहती है अच्छा भगवान ने ऐसे कहा है कि एक वरदान, बस तुम भगवान से खूब धन संपत्ति मांग लो ताकि मैं खूब गहने पहन सकूं, सज धज करके रह सकूं रानी की तरह, खूब धन मांगो। अब सोच में पड़ गया धन मांगो, धन तो मैं कमा सकता हूं मेहनत करके, कुछ और मांगो। तो माँ के पास गया, माँ को पूछा, माँ ने कहा बेटा चलो पत्नी आपकी धन कह रही है ठीक है, पर बेटा मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे तुम्हारा ये तुम्हारी गोद में बच्चा आ जाए, तो बस भगवान से यही कामना कर कि मैं दादी बन जाऊँ, हाँ और आपको एक बच्चा हो जाए तो कम से कम घर का चिराग जलता रहे, तो बच्चे की इच्छा कर भगवान से। तो उसने कहा बच्चे की इच्छा, अभी तो शादी हुई, अभी तो वो कौन सी बड़ी बात है, होगा इसके लिए अभी क्या बैठ के ये सोचूं। तो पिता के पास गया, सोचा पिता कुछ समझदार होगा, वो कुछ अच्छी बात कहेगा। अब पिता की आंखें नहीं थी, उसको दिखाई नहीं देता था, तो पिता ने कहा बेटा अगर बेटा भी हो जाए तो मैं तो देख नहीं सकूँगा, धन भी मिल जाए तो मुझे भी क्या सुख मिलेगा, मैं तो कुछ भी नहीं देख सकूंगा, तो भगवान से बस मेरे लिए आंखें मांगो। अब सोच में पड़ गया क्या मांगू, लेकिन उसको कोई मिल गया, एक होशियार ब्रह्मा कुमार मिल गया। उसने कहा अरे तुम तो तीनों ही एक वरदान में मांग सकते हो, आप क्या कहो, हे भगवान मेरा पिता अपने पोते को सातवें मंजिल पर सोने के कटोरी में दूध पीता हुआ देखे, समझ गए मेरा पिता अपने पोते को सातवें मंजिल पर सोने के कटोरी में दूध पीता हुआ देखे, इसका मतलब क्या हुआ तीनों ही प्राप्तियां हो गई, वो देखेगा भी, धन भी आएगा, बेटा भी आएगा, सब आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हे भगवान हाँ एक मकान दिला दो, हे भगवान ये दिला दो, हे भगवान वो दिला दो, वो दिला दो। अब शिव बाबा कहते हैं इस कलयुग की दुनिया की छोटी छोटी आशाएं मत मांगो, मैं तो तुम्हें स्वर्ग का अधिकार देने आया हूँ। यहाँ तो कलयुग में कहा जाता है कम खाओ गम खाओ, जितना ज़्यादा पसारा उतना सिर पर और चिंताएं। लेकिन अगर हम अपने मन को उस परमात्मा में लगाते हैं तो हम देखते हैं ये इच्छाएं भी अपने आप कम होती जाती है और प्राप्ति भी अपने आप होती है, क्योंकि इस संसार की जितनी भी इच्छाएं हैं ये सब आपकी परछाई की तरह है। जैसे परछाई के पीछे पीछे दौड़ेंगे क्या होगा, परछाई आपसे दूर दूर जाएगी और लंबी होती जाएगी, क्योंकि रोशनी को तो आप पीछे छोड़ आए हो, तो परछाई लंबी होगी और दूर भी जाएगी आपसे। लेकिन अगर आप परछाई को पीठ दो और रोशनी की ओर जाओ तो क्या होगा, परछाई छोटी होती जाएगी और आपके पीछे पीछे आएगी, और जैसे ही आप रोशनी के पास पहुंचेंगे परछाई आप में समा जाएगी, और परछाई के पीछे गए तो रोशनी भी दूर और परछाई भी हाथ नहीं आएगी। इसीलिए बहुत सुंदर कहावत है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। दुविधा में ही रहते हैं, माया के पीछे जाते हैं पर डर लगता है कहीं राम ईश्वर से कहीं हमें श्राप न मिल जाए, कुछ ये न हो जाए, कि वो नाराज न हो जाए, तो वो भी सुख नहीं ले पाते और ईश्वर का भी सुख नहीं ले पाते, दोनों से ही वंचित हो जाते हैं। तो राजयोग वो रॉयल योग है जिसके द्वारा हम मन की लगन परमात्मा में लगाते हैं और उनके गुणों की महिमा गाते 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 परमात्मा के गुणों में खो जाते हैं। इसी कोई भक्तों ने कह दिया कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। लगन में मगन का अर्थ ये होता है कि परमात्मा के गुणों में विलीन हो जाना, अपना दिल ईश्वर को देना, अपने दिल में ईश्वर को स्थान देना। कैसे ईश्वर को स्थान देंगे, ये जो सर्वव्यापकता की जो भावना भक्तों में जागी किस आधार पर, ईश्वर से इतना प्रेम है तो वो प्रेम कैसे व्यक्त करे, जिससे प्रेम होता है उसको या तो दिल में जगह देंगे या तो आँखों में जगह देंगे। दिल में जगह देंगे जैसे हनुमान ने श्री राम को दिया, आँखों में देंगे जैसे मीरा ने कृष्ण को दिया। हनुमान कहे राम तो मेरे दिल में बैठा हुआ है, दिल चीर कर दिखाया कि देखो राम मेरे हृदय में है। अब ये तो भावनात्मक बात है ना, मीरा को श्री कृष्ण के साक्षात्कार होते थे, वो पल पल पर कृष्ण को ही देखती थी, जहाँ देखती हूँ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यही कहती थी तू ही तू, क्योंकि उनके आँखों में बसा हुआ था। लाली मेरे लाल की जित देखूं, तित लाल लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल, उस लाल में लाल जुड़ गया। लाल के दो अर्थ होते हैं, एक लाल तो रंग हुआ, दूसरा लाल माना जो प्रीतम है, प्यारा है। तो आत्मा का सच्चा प्रीतम, सच्चा प्यारा एक परम पिता परमात्मा है। जो शुद्ध पवित्र चीज़ होती है, सत्य चीज़ होती है, वही आकर्षित करती है। और सबसे सत्य कौन है, एक परमात्मा है। सत्यम शिवम सुंदरम, एक परमात्मा है। सत्य चीज़ आकर्षित करती है, शिवम यानी कल्याणकारी चीज़ आकर्षित करती है, सुंदर चीज़ आकर्षित करती है, क्योंकि आत्मा भी सुंदर है, गुणों से संपन्न है। परमात्मा परम सुंदर है, गुणों का सागर है, इसीलिए वो ही सबसे आकर्षण का केंद्र हो। लेकिन परमात्मा के गुण गाते गाते शिव बाबा आप शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर हो, और मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, और खो जाओ सागर में। शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में खो जाए, प्रेम स्वरूप आत्मा प्रेम के सागर में खो जाए, आनंद स्वरूप आत्मा आनंद के सागर में खो जाए, और खो जाए माना उसमें समा जाए। हम अलग करें क्यों अपने आप को, मांगने की तो बात ही नहीं है, मांग करके हम क्या प्राप्त करेंगे, संसार की वस्तुएं भी मांग करके हम कितना प्राप्त करेंगे। परमात्मा तो सर्वस्व देने लिए आए हैं, स्वर्ग का अधिकार देने के लिए आए हैं, पर पहले कहते ये राजयोग का अभ्यास करो, अपने इंद्रियों के राजा बनो, अपने मन के राजा बनो, और उससे जो कर्म आपके होंगे उससे आप दिलों के राजा बनोगे सबके, और जब दिलों के राजा बनोगे तो विश्व का राज्य जीतना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, मानुष से देवता सहज बन सकेंगे। तो चलिए अब वो प्राप्ति हम आत्माएं अभी करेंगी, कुछ समय के लिए अभ्यास करेंगे, फिर इसके बारे में और आगे कल आपको सुनाएंगे सवेरे के सत्र में। अभी हम सब योग में बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, ये लाल प्रकाश हमें संकेत देता है कि अब अपने विचारों को इस दुनिया से हटाकर परम धाम में लगाओ, वो अखंड ज्योति का महतत्व, सुनहरा लाल प्रकाश का महतत्व, हम आत्माओं का घर, जहाँ मेरे प्यारे परम पिता शिव बाबा भी निवास करते हैं, मैं आत्मा भी वहीं की निवासी हूँ। तो पहले एक अंतर की यात्रा, फिर ऊपर की यात्रा है, एक यात्रा है ये, इसका और विस्तार आपको कल बताएंगे, लेकिन अंतर की यात्रा का मतलब है पहले अपने आप को पहचानना, ये देह अभिमान रूपी रबर को हटाना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किसकी संतान हूँ, क्या मेरे गुण हैं, ये अपने आप को पहचानना है। इससे देह का अभिमान अपने आप मिटता जाएगा। फिर परमात्मा कौन है, उसके क्या गुण हैं, उनके साथ आत्मा का क्या संबंध है, उसका चिंतन करते करते उसमें खो जाना, यही राजयोग है। कोई मंत्र आपको नहीं देंगे कि आप इसका जाप करें, लेकिन ये मंत्र मन को बुद्धि के द्वारा चिंतन के माध्यम से देना है, जिससे मन का शुद्धिकरण भी होगा और मन सहज परमात्मा में लग जाएगा, जो सत्यम शिवम सुंदरम है। अगर बीच बीच में मन कहीं भटक रहा हो तो वापस लाइए, फिर से शुद्ध चिंतन करके, और विस्तार फिर कल बताएंगे, लेकिन अभी जो सुना, परमात्मा के साथ लगन लगाने लिए आत्मा और परमात्मा का परिचय चिंतन में लाइए, फिर उनसे संबंध जोड़िए, तीन बातों की समानता को बुद्धि में रखते हुए, उनसे सच्चा स्नेह हो बिना किसी स्वार्थ के, उनके गुणों की महिमा, और गुणों की महिमा करते करते लगन में मगन हो जाओ। तो सीधा बैठे, आंखें भले खुली हो, सामने देखें, राजयोग हम करने बैठे हैं, निद्रा योग नहीं, राजयोग, राजा होके बैठे, और अंतर में खुशी लाए, बहुत खुशी, क्योंकि आप बहुत महान कार्य करने बैठे हैं, सच्ची कमाई करने बैठे हैं, ये सच्ची कमाई है, आत्मा को जो गुणों की कमाई मिलती है ये आत्मा के साथ जाएगी कमाई, अभी भी अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो ये आत्मा के साथ जाएगी कमाई, शांति, खुशी, प्रेम, शक्ति की संपत्ति आत्मा के साथ जाएगी। तो अंतर में खुशी भी हो और साथ साथ एक नशा भी हो, कहा जाता है सब नशों में है नुकसान सिवाय एक नशे के, वो नशा है ईश्वर का नशा, मैं किसका बच्चा हूँ, संसारी नशे मत रखो, वो खाने पीने के नशे तो बहुत ही बुरे हैं, कुछ उपलब्धियों का प्राप्तियों का भी नशा, ये भी दुख धोखा देगा, लेकिन ये नशा मैं कौन और किसकी संतान, कहाँ का रहवासी, ये नशा चढ़ाओ तो बाकी सब नशे फीके लगेंगे, इसी नशे में आत्मा मग्न रहेगी। तो बैठेंगे सीधा, हाँ, अपने हाथों को कुछ सामान, कुछ वस्तु आपके पास हो नीचे रख दीजिए, कुछ भी हाथ में ना, खाली स्वतंत्र, कोई भी बंधन नहीं। आत्मा को इस देह के बंधन से भी पार जाना है, इस देह से भी ढीला होना है। जैसे शरीर पर वस्त्र पड़े, ये वस्त्र शरीर से अलग है, वैसे शरीर भी एक वस्त्र है जो मुझ आत्मा से अलग है। तो इस देह के अभिमान से, भान से भी आत्मा परे जाए। तो पहले एक अंदर की यात्रा कि मैं कौन, फिर खुद को ही उत्तर दे, मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, भ्रकुटी के बीच में मेरा निवास है। तो आत्मा सहज ही अपने आप को यहाँ फोकस करे, यहाँ ध्यान केंद्रित करे, मैं ज्योति बिंदु आत्मा या भ्रकुटी के बीच निवास करने वाली चेतन सत्ता, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक। तो सहज रूप से देह भान से परे हो जाएंगे। अगर देह को यूज़ भी कर रहे हैं तो यूज़ कर रहे हैं, पर फिर न्यारा, मैं आत्मा आँखों से देख रही हूँ, नहीं देखना है न्यारे हो जाओ। आत्मा कानों से सुन रही हूँ, नहीं सुनना है न्यारे हो जाओ। आत्मा मुख से बोल रही हूँ, नहीं बोलना है न्यारे हो गए। आत्मा हाथों से कर्म कर रही हूँ, नहीं करना है न्यारे हो गए। मैं आत्मा मालिक हूँ इस देह की इंद्रियों के। फिर बुद्धि द्वारा मन को उस परम धाम में दिशा देते हैं, डाइवर्ट करते हैं, मन रूपी घोड़े को वहाँ पहुँचाते हैं। आत्मा मन की आँख से परमात्मा को देखती है, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु है, और उनसे जो संबंध टूटा हुआ है वो फिर से जोड़ती है। शिव बाबा आप ज्योति बिंदु स्वरूप है, मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। आप परम धाम के वासी हैं, मैं आत्मा भी परम धाम वासी हूँ। फिर परमात्मा से बातें करते हैं। आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और जैसे ही कहा शांत स्वरूप, हो गए शांत, वो स्थिति बन जाती है, फिर वो शक्ति की अनुभूति करते हैं। तो फिर से एक लगन में बैठेंगे, सीधा बैठें, हल्के हो जाएं, आंखें अपने आप बंद हो जाए कोई बात नहीं, पर हट करके आंखें बंद नहीं करनी है, सामने से वाइब्रेशन लेंगे। श्वास आपका नेचुरल चलता रहे, न रोकने की आवश्यकता है, न भारी होने की आवश्यकता है, स्वाभाविक। स्वयं से पूछें, मैं कौन हूँ? और स्वयं को ही उत्तर दें, मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा दिव्य प्रकाश हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ। चैतन्य सत्ता हूँ। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। भ्रकुटी के बीच चमक रहा हूँ। मेरा मूल निवास, पांच तत्वों से पार, अखंड ज्योति का महतत्व है, जहां सूर्य चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, वह मेरा निज धाम है। शांति धाम, परम धाम, मन और बुद्धि से उस धाम में पहुंच जाएं। एक बेहद दुनिया जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है, असीम शांति ही शांति है। मैं आत्मा इस बेहद दुनिया में अपने प्यारे परम पिता शिव बाबा के सम्मुख हूं। जो रूप में ज्योतिर्बिंदु, और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है। उस बिंदु की किरणें चारों ओर फैल रही है। यही मेरे परम पिता परमात्मा है, जिसके साथ मुझ आत्मा के सर्व संबंध है। जो शांति के सागर है, मैं आत्मा उनकी संतान शांत स्वरूप हूं। शांत स्वरूप, शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति धाम मुझ आत्मा का स्वदेश है। शांति का सागर परमात्मा मुझ आत्मा का परम पिता है। उस सत्यम शिवम सुंदरम के मैं सम्मुख हूं। बिंदु में सिंधु की शक्ति शिव बाबा में है। प्यारे शिव पिता, आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप। शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप। शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा जाए। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव को अनुभव कर रही हूँ। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में समा रही है। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। ये कैसी न्यारी और प्यारी अवस्था है। शिव पिता का सानिध्य पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई। जो पाना था वह सब कुछ पा लिया। धन्यवाद बाबा। आत्मा भरपूर है। मेरे सर्व संबंध एक शिव परमात्मा के साथ है। वही मेरा सर्वस्व है। कितना आनंद है, कितनी शक्ति का अनुभव हो रहा है। इसी शक्ति को स्वयं में समाकर भरपूर हो जाए। सर्व संबंध एक शिव पिता के साथ। मेरे माता पिता बंधु सखा स्वामी और सतगुरु एक निराकार शिव पिता है। मैं आत्मा भी निराकार हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। ये कैसी न्यारी और प्यारी अवस्था है। मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप का अनुभव कर रही हो। अब इसी शक्ति को स्वयं में भरपूर कर वापस लौटे साकारी दुनिया में, पंच तत्वों के संसार में, अपने प्राकृतिक शरीर में, और इस कर्म क्षेत्र पर फिर से कर्म करने के लिए अपने भ्रकुटी में विराजमान हो जाए और आत्मा के अंदर जो गुण निहित है उन गुणों को कर्म में व्यक्त करें। यही राजयोग की सार्थकता है। जिससे यह जीवन तो सफल होगा ही, पर जन्म जन्म सफल होंगे। यही आत्मा को विश्वास है। ओम शांति शांति शांति।